تفسير. الحمد لله، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 21ویں پارے کا آغاز ہے. ھذا من فضل ربی، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے. شام کی یہ کلاس، اور اس میں آپ سب بھی جاب کر کے اور محنت مزدوری کرنا، اور پھر گھر میں رہتے ہوئے بحیثیت ماں کے، بیوی کے، اپنے فرائض اور اپنے کاموں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پھر اس کلاس کو لے کے چلنا، یہ بڑے ہی ہمت اور حوصلے کی بات ہے. اور الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور اس موقع پر ہم جو ہے وہی دعا مانگیں گے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه. کہ اللہ ہم ایسے عمل کریں جو تجھے راضی کر دیں، جو تجھے پسند آئیں. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے مجھ کو، ہم کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے. اے ہمارے رب، ہمیں قابو میں رکھ کہ ہم تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتے رہیں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیے ہیں، اور ایسے عمل کریں جو تجھے راضی کر دے، جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے ہم کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر لیجئے. آمین سم آمین. سورة العنکبوت آیت نمبر 45 جو ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دی گئی ہے، صبر اور توکل کی عملی تدبیر بتائی گئی ہے. اکثر ہوتا ہے نا کہ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے نا. تو صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی چابی کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے، یہ آرڈر کا صیغہ ہے. اتلو، اتلو جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کے دو روٹ ہیں، ایک ہے تا لام واو، دوسرا ہے تا لام یا. تو تلا یتلو تلاوتن، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور تلا یتلو تلون، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے آنا. تو تلاوت کے معنی کیا ہے؟ ایک پھر اس کے معنی یہ آئے کہ اس کو پڑھنا ہے، دوسرے معنی یہ آئے سامنے کے پڑھنے کے ساتھ جو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. آپ پڑھ کر اس کو گزر نہیں سکتی، کوئی اور نہیں آئیں گے جو کتاب کی تلاوت پر عمل کریں گے. تو جن تکلیف دہ حالات میں مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گزر رہے تھے، ان میں صبر، ثبات، حوصلہ پیدا کرنے کے لیے پہلی تدبیر یہ بتائی گئی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ آپ قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کیجئے اور اس پر عمل کیجئے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سے فوائد ہیں، اس کے بہت سے مقاصد ہیں. اجر اور ثواب کے لیے، اس کے معنی اور مطالب پر تدبر کرنا اور تفکر کرنا، اس کو پڑھانا، इसको समझाना, वाज करना, नसीहत करना। तो ये जो तिलावत है इसमें कई चीजें आती हैं और ये अमली तदबीर है। नंबर एक, कुरान की तिलावत। और तिलावत के बारे में आप ये बात याद रखिए कि वो तिलावत जो इंसान के हलक से गुजर कर इसके दिल तक नहीं पहुंचती, वो उसे कुफर की तुगयानियों के मुकाबले में ताकत फराहम नहीं कर सकती। जैसे ऐसी बस ओपरी सी तिलावत है कि ना दिल पे असर है, ना दिमाग पे, ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ना आंसू बह रहे हैं, ना एक उसका तासीर उसकी पैदा हो रही है। तो याद रखें कि ऐसी तिलावत से जो है वो सब्र और हौसला नहीं मिल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही डराने वाली हदीस है और ये बुखारी और मुस्लिम की जो है वो इसकी सनद है, उसने रवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग्रोह के बारे में फरमाया, वो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना, इसके क्या मानी है कि लोग कुरान की तिलावत करेंगे सुबह शाम हर वक्त, कई कुरान खत्म करेंगे लेकिन उनका जहन, उनकी फिक्र, उनका इखलाक और किरदार वो कुरान के मुताबिक तब्दील नहीं होगा। कुरान पढ़कर भी आदमी वो सब कुछ करेगा जिसे कुरान मना करता है। और याद रखें कि ये एक मोमिन की तिलावत नहीं है। आप जरा सोचे तो सही कि आप अपने बच्चे से एक काम कहती हैं, बच्चा सुनता है तो साइड पर हो जाता है, फिर आप दूसरी बात कहती हैं फिर वो इधर हो जाता है, आप तीसरी बात कहती हैं फिर वो इधर हो जाता है। अब अपने नौकर चाकरों को कहते हैं कि ये करो वो करो, आज खाने का ये मेन्यू है और आज सफाई होनी चाहिए, आज मेहमान आएंगे, फलां चीज फलां जगह से उठानी है, लेकिन वो टस से मस ना हो तो कैसा लगता है ना। कैसी आप देखें कि आप इंस्ट्रक्शन देती हैं, कैसे ईमेल करती हैं, आप खत लिखती हैं, आप फोन पर बताती हैं ऐसे ऐसे करना है अपने बच्चों को, अपने नौकर चाकरों को, ये वो सुनते ही नहीं है। तो अब ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे और आपके नाम खत है। आपने कभी सोचा, आपने कभी महसूस किया कि मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने, मेरे हाकिम ने, 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले ने, अर्रहमान अर्रहीम ने, अर्रहमान अल्लामल कुरान, उसने ये खत मेरे नाम लिखा है। आपके नाम कोई ईमेल आ जाए, आपके नाम फोन पर मैसेज आए किसी बड़ी हस्ती का, आप कितने बेचैन होते हैं, आप कितने बेताब होते हैं, आप फौरन घर जाते हैं, सबसे पहले आप वो मैसेज सुनना चाहते हैं। और आप तो घर जाने की भी जरूरत नहीं, आप बाहर भी रहकर वो अपना वो पासवर्ड डालकर आप वो मैसेज सुन लेते हैं, है ना। आप साथ साथ कंप्यूटर को और आईपॉड को लिए फिरते हैं कि जहां भी, गाड़ी में भी बैठे हैं, पार्किंग में थोड़ी देर के लिए गाड़ी गर्म हो रही है और आप देखते हैं कि कहीं क्या कोई ईमेल तो नहीं आई, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। और अल्लाह ने ये मैसेज, ये पैगाम मेरे और आपके नाम भेजा और आप सोचें कि आप इसके साथ क्या सलूक करते हैं, आप क्या सलूक करती हैं, मैं क्या सलूक करती हूँ, इस पे गौर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक और हदीस है कुरान के बारे में, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पर ईमान नहीं लाया वो शख्स जिसने इसकी हराम की हुई चीजों को हलाल कर लिया। अब आप जरा सोचें, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो कुरान पर ईमान ही नहीं लाया, और इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने एक फहरिस्त गिनवा दी है, ये हराम है, लेकिन तिलावत करते हैं। देखें अब तक की जिंदगी में आपने कितने कुरान खत्म किए होंगे, आप कितनी खुश होती हैं कि इस रमजान में मैंने इतने कुरान खत्म किए। आज किसी का पता चल रहा था कि वो एक हफ्ते में एक कुरान खत्म कर लेती है, लेकिन कुरान खत्म कर लेना और उस पर सोचना, उस पर अमल ना करना और वो कुछ ना करना जो अल्लाह चाहता है, तो इसके माने क्या हैं कि वो कुरान पर ईमान नहीं लाया। ऐसी तिलावत आदमी के नफ्स की इसलाह नहीं कर सकती, वो उसकी रूह को ताकत नहीं दे सकती, बल्कि इंसान ढीठ हो जाता है, उसका जो जमीर है वो मुर्दा हो जाता है, बेहया हो जाता है। अल्लाह की किताब को पढ़ता है, अल्लाह की हदायात को पढ़ता है, आंखों से देखता है, सुनता है, फिर इन हदायात की खिलाफ वर्जी करता है, वो मुजरिम बन जाता है। क्यों? कि पढ़ता है, जानता है और उसके खिलाफ जो है वो अमल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान हुज्जत है तेरे हक में या तेरे खिलाफ। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। तो आइए फैसला करें कि मुझे सब्र व सबात के लिए, तवक्कुल अल्लाह के लिए, मौजूदा दौर में जो मुश्किलात का दौर है, जो परेशानियों का दौर है, और अंदर अंदर से भी तूफान है, नफ्स नफ्स की सरकशी है, और सोसाइटी भी हर तरफ से जो है वो बुराइयों से जो लदी फंदी नजर आ रही है, तो उसमें मैं अपने ईमान की हिफाजत कैसे करूं, मैं कैसे सबर करूं, मैं दूसरे के रवैयों के खिलाफ कैसे सबर करूं, और तो उसका क्या तरीका है कि कुरान मजीद की तिलावत भी की जाए और उस पर अमल भी किया जाए। तो इससे एक मादी और इखलाकी ताकत मिलेगी। तिलावत कुरान उत्लुमा ओहिया इलेका मिनल किताबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के जरिए भेजी गई है। और ये जो हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, ये मेरे और आपके सबके लिए जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना जो है, ये क्या है कि ये अल्लाह का हुक्म है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम मेरे रसूल का इत्तबा करो तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो अल्लाह की मोहब्बत भी रसूल की पैरवी में मिलती है और गुनाहों की मगफिरत भी। तो जब रसूल को हुक्म दिया जा रहा है कुरान मजीद की तिलावत करने का, उसकी पैरवी करने का, तो आप सोच लीजिए कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा हो जाती है। दूसरी तदबीर है सबर और तवक्कुल की, व अकीम सलाह, और नमाज कायम कीजिए। ये दूसरी तदबीर है सीरत सीरत बिल्ड करने के लिए, किरदार की पुख्तगी के लिए। अकामते सलात, अकामते सलात जो है ये वो तदबीर है कि जिसकी वजह से इंसान बुराइयों से बच सकता है। अब आप देखें कि ये नहीं कहा कि वो नमाज पढ़ते हैं, बल्कि कहा कि वो नमाज को कायम करते हैं। इसके मानी है कि खुद भी पढ़ते हैं और सोसाइटी में भी नमाज कायम करते हैं। और नमाज को कायम करना, अकामते सलात करना, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि सबसे पहले इखलास, नंबर दो अल्लाह की तरफ ध्यान, दिल का हाजिर होना तहारत कल्ब, नंबर तीन फिर बाजमात जो नमाज है उसका अहतमाम, फिर अरकान नमाज, नंबर चार, नंबर पांच खुशू व खुदू की कैफियत, नंबर सात फिर पाबंदी करना, नंबर आठ रिज़्क़े हलाल का अहतमाम करना। तो नमाज जो है उसको कायम करना। अच्छा, नमाज को जब कायम किया जाता है उसकी सही रूह के साथ, जैसी कि नमाज मतलूब है, तो उससे क्या फवायद होते हैं? इन सलात तनहा अनिल फाहशा वल मुनकर, यकीन नमाज फोहश और बुरे कामों से रोकती है। अब यहां पे आप देखें तनहा नूनहा या नहीं मना करना, और नमाज क्या करती है? फहश बुराइयों से, बेहयाइयों से, बदकारियों से रोकती है। और दूसरा लफ्ज जो है वो अल मुनकर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने अकामते नमाज की दो सिफात बयान की हैं, दो खूबियां बयान की हैं, उसके दो फवायद बताए हैं कि नमाज फोहश और बुरे कामों से रोकती है। तो इन दोनों में असल चीज क्या है कि वो बुराइयों से रोकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप देखती हैं अपने इर्द गिर्द और आप अपने बारे में भी सोचें कि आप तो पांच वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ती हैं, और बहुत से लोगों को आप जानती हैं कि वो पांच वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं बल्कि तहज्जुद भी और नवाफिल भी, लेकिन क्या बात है कि इसके बावजूद वो बुराइयों में डूबे रहते हैं? क्या वजह है कि फवाहिश और मुनकरात का एक सैलाब है कि जिसके अंदर वो डूबे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? नमाज पढ़ने वाला जो है वाकई फोश और मुनकर से क्यों नहीं रुकता? तो इसके लिए मैं आपको दो मिसालें दूंगी। एक तो ये कि जैसे मसलन आप में से देखें कितने लोग ड्राइवर है, आप हाथ खड़ा करें, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? देखें आप जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको खूब इस बात का अंदाजा होता होगा कि अगर आप जब गाड़ी चला रही हैं और गाड़ी जो है वो ढलवान पर खड़ी हुई हो, स्लोप है, नीचे की तरफ है, तो आपको उस पर ब्रेक लगानी होगी, है ना? अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगी तो गाड़ी नीचे जाती जाएगी, और आप स्लोप से ऊपर जाना चाहती हैं तो इंजन की ताकत से गाड़ी चढ़ाई चढ़ेगी। यानी फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो रेस ज्यादा देनी है और इंजन की ताकत से गाड़ी जो है ना ऊपर चढ़ेगी। तो आप क्या कर रही हैं, एक तरफ आप जो हैं पूरे यानी गाड़ी चलाते हुए गाड़ी आपके पूरे कंट्रोल में है और आप पूरी रेस के साथ ऊपर चढ़ा रही हैं, और नीचे जाने से रोकने के लिए फिर आप क्या करती हैं कि आप साथ साथ जो है वो ब्रेक पर पांव भी रखती हैं, ध्यान रखती हैं। और दूसरी मिसाल जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आप देखें कि कोई बीमार है, जैसे शुगर का मरीज है, अब उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे शुगर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, दो काम करता है, एक उसको परहेज बताता है, एक उसको दवाई देता है कि ये पाबंदी के साथ इस्तेमाल करनी है और ये उसकी टाइमिंग है। तो अब वो मरीज क्या करता है, मरीज जो है वो परहेज नहीं करता, वो दवाई को जिस तरीके से उसको बताया गया है उस पाबंदी के साथ और उस तरीके और उन शरायत के साथ जो हकीम ने बताई हैं, जो डॉक्टर ने बताई हैं, वो उसका जो है वो इस्तेमाल नहीं करता। तो अब आप बताइए कि क्या जो दवाई है इसका असर जाहिर होगा क्या, क्योंकि उसने परहेज भी नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जो उसकी बीमारी है उसको कुछ भी अफाका नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह जो है यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इन सलात तनहा अनिल फाहशा वल मुनकर, के यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इसके ये मानी है कि अगर किसी की नमाज उसको बुराई से रोकती नहीं है, अगर किसी की नमाज उसको फोश कामों से रोकती नहीं है, तो इसके मानी है कि उसने नमाज पढ़ी ही नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर कोई शख्स जो है वो नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसकी नमाज जो है उसके अंदर ऐसी खासियत पैदा नहीं हो रही, उसको बुरे कामों से रोक नहीं रही, तो इसका ये मतलब है कि नमाज की वो खासियत जो है ना, वो नमाज के जो उसके अंदर नमाज की रूह होनी चाहिए थी वो उसके अंदर नहीं है। तो याद रखें कि नमाज पढ़ने वाला जो है उसको नमाज के औसाफ के साथ, उसकी शरायत के साथ, उसके अरकान के साथ, उसकी असल रूह के साथ उसको नमाज पढ़नी है। और नमाज की असल रूह क्या है कि इंसान दुनिया में आजाद नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है, अल्लाह का बंदा है। और नमाज की रूह ये बताती है कि इंसान जो है वो खुले और छुपे तमाम मामलात में अल्लाह के आगे जवाबदेह है, अल्लाह उसकी नीयत इरादे सबसे वाकिफ है, उसको अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही करनी है। मसलन आप देखें कि अल्लाह छुपे और जो जाहिर है सारे मामलात को जानते हैं। आप नमाज में देखें, आप क्या करती हैं, आप नमाज पढ़ना चाहती हैं, आपको वुजू करना है। अगर आपका वुजू नहीं है और वुजू टूट गया है तो अगर आप उठकर नमाज पढ़ लें तो किसी को पता नहीं है ना, अल्लाह को पता है ना। और अगर आप नमाज की नीयत ना करें, बस ऐसे रुकू सजदा करती जाएं, खामोशी से गजलें पढ़ती जाएं और कुछ गुनगुनाती रहें, तो किसको पता है ये बात, अल्लाह को पता है ना। अगर आप पाक नहीं है, जिस्म पाक नहीं है, कपड़े पाक नहीं है, किसको पता है, अल्लाह को पता है ना। तो अल्लाह जो है वो आपके जाहिर को जानता है, आपके बातिन को जानता है। तो आप नमाज के अगर अमल पर गौर करें तो आप देखेंगी कि नमाज जो है वो इंसान की तरबियत करती है, एहसास जिम्मेदारी पैदा करती है, उसको फर्ज जनास बनाती है, और इंसान जो है उसको जिम्मेदार बनाती है कि जाहिर और बातिन मेरा सब कुछ अल्लाह के सामने है। और आप देखें कि दुनिया की कोई ताकत किसी को नमाज नहीं पढ़ा सकती, जब तक के जो है किसी के दिल में अल्लाह का खौफ ना पैदा हो। तो इसी तरह नमाज जो है वो जज्बाए अताअत पैदा करती है। अब आप देखें कि ये नहीं कि बस एक दफा नमाज पढ़ ली, उधर कलमा कोई पढ़ता है फौरन उसको नमाज पढ़नी है। ज़कात तो तब देगा ना जब एक साल हो जाएगा, हज तो तब करना ना जिंदगी में एक दफा, रोजे तो तब रख रहे हैं ना जब रमजान का महीना आएगा। लेकिन नमाज ऐसी इबादत है कि फौरन जो है मुसलमान होने के बाद जो है वो इंसान पर फर्ज हो जाती है, और ये बाकायदगी के साथ है, कभी कभार नहीं बल्कि मसलसल पढ़नी है, वक्त की पाबंदी के साथ पढ़नी है। इसीलिए कहते हैं ना कि वक्त की नमाज है और बेवक्त की टकरे हैं। तो साथ साथ अपना जायजा लेना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए कि मेरी नमाज जो है मेरे अंदर कैसे असरात पैदा करती है। अगर कोई शख्स जो है नमाज के तर्जुमे पर गौर करे तो और ज्यादा अल्लाह के करीब होगा। देखिए आप नमाज में क्या कहते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, के अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो अब जाए नमाज से जब आप उतर आती हैं तो अल्लाह ताला देखते हैं कि ये वही है जो मेरी इबादत करने वाली थी। आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, आप कहीं ये गीबत तो नहीं कर रही, चुगली तो नहीं कर रही, आप किसी का हक तो नहीं मार रही, आप आंखों को कहीं लड़ा तो नहीं रही, कहीं गलत बातें तो नहीं सुन रही, गलत चीजें तो नहीं देख रही। तो अल्लाह ताला जो है वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला जो अलीम है, जो बसीर है, जो समी है, अल्लाह जो है वो देखता रहता है कि दो नमाजों के दरमियान इस औरत का, इस मर्द का, इस मुसलमान का क्या रवैया है। तो असल बात क्या है कि ऐसी नमाज जो इंसान को अल्लाह की कुर्बत दे, अल्लाह का खौफ दे, जो गुनाहों से रोक दे, ऐसी नमाज दरअसल मतलूब है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नमाज ने जिसे जिसकी नमाज ने फोहश और बुरे कामों से ना रोका, उसकी नमाज नहीं है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि मेरी नमाज कबूल हुई है या नहीं, आप चाहती हैं आपको पता चले कि मेरी नमाज कबूल हुई है कि नहीं, तो इसकी एक की है। इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स ये मालूम करना चाहे कि अल्लाह ने इसकी नमाज कबूल की है या नहीं, उसे ये देखना चाहिए कि उसकी नमाज ने उसे फोहश, फोहशा और मुनकर से कहां तक रोका। अगर नमाज के रोकने से वो बुराइयां करने से रुक गया तो इसकी नमाज कबूल हुई। अगर वो नमाज पढ़कर भी जैसा पहले था वैसा ही था, बुरे काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी नमाज जो है वो कबूल नहीं हुई। तो यहां पर जो है वो दूसरी जो तदबीर बताई गई है मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए, वो है नमाज की तदबीर। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब कोई अहम मामला पेश आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का एहतमाम करते। इजा हजबहू अमरुन फजिया इला सलाह, इसे मुस्नद अहमद और अबू दाऊद ने रवायत किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे जो काम सुपुर्द किया गया था, आपको अल्लाह ताला की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाजों के अलावा रात की तन्हाई में तहज्जुद की नमाज पढ़ते, और कहीं थोड़ी सी कोई मुश्किल परेशानी पेश आ जाती, आंधी ही तेज चलने लगती, हवा तेज चलने लगती, आप तेजी से मस्जिद नबी का रुख करते और आपके चेहरे का रंग जो है वो बदल जाता। तो याद रखें कि हमारा बेहतरीन सहारा जो है वो कुरान और नमाज है। आप मुश्किलात में, परेशानियों में और अपनी जिंदगी के इस सफर को तय करने के लिए आप कुरान से दोस्ती कर लीजिए, और सारी जिंदगी की दोस्ती है ये, नहीं कि ये छोटा सा बस एक सर्सरी सा जो आप कुरान में से गुजर रहे हैं, आप समझें कि बस अब ये काफी है और आप इस पर खुश हो जाएं और बस बस इसी को अपने लिए गनीमत समझें। अच्छा है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इसकी तौफीक दी, लेकिन आप याद रखें कि सारी जिंदगी कुरान को पढ़ना है, इसको समझना है, इसका तालिब इल्म रहना है, और जो कुछ आप समझ रही हैं फिर आपने ये नियत करनी है कि उसे दूसरों तक पहुंचाना है। और उसके साथ ही नमाज जो है 5 वक्त की नमाज जो है इसकी पाबंदी करनी है, और आप अपनी डिक्शनरी से कजा कलफ निकाल दीजिए। आप तय कर लीजिए कि मुझे नमाज अदा करनी है, कजा नहीं करनी, यानी बाद में नहीं करनी, बल्कि जो औकात है उसी में नमाज जो है वो पढ़नी है। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। तो नमाज में सजदा जब इंसान करता है अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। नमाज में तो अपने आप को झुका दिया लेकिन दिल अल्लाह की तरफ झुका ही नहीं, दिल ख्वाहिशात की पूजा करता है, मैं खत्म नहीं होती, तकबुर खत्म नहीं होता। तो क्या करना है, इन सलात तनहा अनिल फाहशा इवल मुनकर, कि यकीनन नमाज फोहश और बुरे कामों से रोकती है। वला जिक्रुल्लाह अकबर, अलबत्ता अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। इसके क्या मानी है कि अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके कई मानी हो सकते हैं। नंबर एक, अल्लाह का जिक्र इससे मुराद नमाज है, और ऐसी नमाज यानी नमाज से मुराद क्या है, अल्लाह का जिक्र, और ऐसा जिक्र ऐसी नमाज जो इंसान को बुराइयों से रोके बल्कि इससे बढ़कर वो नेकियों पर उभारने वाली हो, सबकत इलल खैरात पर आमादा करने वाली हो, ये है अल्लाह का जिक्र। यानी इसका मतलब है कि आपने अपनी नमाज में कितना अल्लाह को याद किया। अगर वाकई आप ऐसी नमाज पढ़ रही हैं कि जिसमें हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, आप अपना जायजा लें, हर मुसलमान अपना जायजा ले कि क्या मैं ऐसी नमाज पढ़ रही हूं कि जो मुझे बुराइयों से रोक रही है और नेकियों पर उभार रही है, तो ये है अल्लाह का जिक्र। नंबर दो, दूसरा इसका मतलब ये है कि अल्लाह की याद बजाय खुद बड़ी चीज है, खैरुल आमाल है, इंसान का कोई अमल इससे अफजल नहीं है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि नमाज उठक बैठक है, नमाज तो पढ़ ली, 5 वक्त के नमाजी हैं, माथे पर जो है वो निशान पड़ गया है, मेराज है, लेकिन अल्लाह की याद नहीं आती नमाज से, अल्लाह का खौफ नहीं आता नमाज, अल्लाह से अल्लाह का डर पैदा नहीं करती, अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं होती। तो याद रखें, वला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। तो ये है दरअसल नमाज की रूह, के अल्लाह को याद रखना। तीसरा इसका मतलब है कि अल्लाह का तुम्हें याद रखना तुम्हारे उसको याद रखने से ज्यादा बड़ी चीज है। क्या, वला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का याद करना तुम्हारे याद करने से ज्यादा अफजल है। अल्लाह ताला का इरशाद है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो जब आप नमाज में अल्लाह को याद करती हैं तो अल्लाह भी आपको याद करता है, और ये बड़ी फजीलत की बात है कि अल्लाह किसी बंदे को याद करे। तो ये इसके मानी है। और अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हों ने, अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हों की जो बीवी हैं, उन्होंने बयान किया कि अल्लाह ताला की याद नमाज तक महदूद नहीं है बल्कि इसका दायरा इससे बहुत ज्यादा वसी है। जब आदमी रोजा रखता है या जकात देता है या कोई नेक काम करता है तो ला महाला अल्लाह ही को याद करता है, तभी उससे वो नेक अमाल सादिर होते हैं। इसी तरह जब आदमी किसी बुराई के मौके सामने आने पर उससे परहेज करता है तो ये भी अल्लाह की याद से होता है। तो याद रखें कि याद इलाही एक मोमिन की पूरी जिंदगी पर हावी हो जाती है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान मैं इसीलिए नमाजी, ना गरज किसी से ना वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से तेरी फिक्र से तेरी याद से तेरे नाम से। और दिल चाह रहा है कि ये बात भी कहूं, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है तेरी रफ्फतों का ख्याल है, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है तेरी रफ्फतों का ख्याल है, मगर अपने आप को मैं क्या करूं, उसे फिर भी शौके विसाल है। अल्लाहु यालमू, और अल्लाह खूब जानता है, मा तसनाउन, जो काम तुम करते हो। तो इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सबर तवक्कुल अल्लाह की तलकीन भी की गई और उसकी अमली तदबीर बताई गई। नंबर एक कुरान की तिलावत, नंबर दो नमाज को कायम करना, और असल रूह जो है वो अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह जानता है कि तुम क्या करते हो। फिर आयत नंबर 40 से लेकर 52 तक, 46 से 52 तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर अहले किताब के बाज एतराजात का जवाब दिया गया है। जो अच्छे अहले किताब हैं इनकी तारीफ की गई है और मुसलमानों को उनसे उम्दा बहस की नसीहत की गई है। फरमाया वला तुजादिलू, और तुम मजादला ना करो और तुम मत झगड़ो, तुम बहस ना करो। अहले किताबी अहले किताब से इंगला बिल्लती ही या आसन, मगर उम्दा तरीके से। अब देखिए कि यहां पर जो है वो मुजादला का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है और इसका रूट है जीम दाल लाम जदल। जदल का लफ्ज जो है ये झगड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, झगड़ा करना। और झगड़े के लिए कुरान में 8 लफ्ज आए हैं। जो जदल है इसका चौथा दर्जा है। जदल के मानी है गुफ्तगू में एक दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश करना, बेजा तकरार करना, दूसरे को पिछाड़ देना, जमीन पर गिराना, तवील गुफ्तगू से झगड़े को तूल देना, कजबहसी करना। कहा कि तुम अहले किताब से बहस ना करो और अगर बात करनी है तो कैसे, इल्ला बिल्लती ही आसन। आसन जो है अफालू के वजन पर है, तो अगर बात करो तो बेस्ट तरीके से करो। इसके माने क्या हैं कि आप जब बात करें तो माकूल दलाइल होने चाहिए, मुहज्जब अंदाज, शाइस्ता जबान, समझाने का अंदाज होना चाहिए कि किसी के ख्यालात की इसलाह हो सके। आमतौर पर क्या होता है कि जब आप जो है स्पीच देते हैं या मुबाहिसा करते हैं या डिबेट करते हैं, बात करते हैं, तो क्या होता है कि गुस्से में आ जाते हैं। पहलवान की तरह लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हकीम की तरह, एक डॉक्टर की तरह जो मरीज का इलाज करता है एक शफकत और मोहब्बत के साथ, ताकि दूसरों के दिलों में हदायत के दरवाजे खुल जाएं। तो बहस का अंदाज बड़ा ही अच्छा होना चाहिए। जिद्दीपन या हठधर्मी या कजबहसी ये ठीक नहीं है। तो ये हमें यानी अहले किताब के साथ भी और आम लोगों के साथ बात करते हुए भी ये अंदाज इख्तियार करना चाहिए। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, सवाए उन लोगों के जो उनमें से जालिम हो। तो जालिम से मुराद है हठ धर्म, जिद्दी, मुसलमानों को धोखा देने वाले, जंग करने वाले। फकूलू, और कहो उनसे, आमन्ना बिल्लजी उन्जिला इलेना, कि हम ईमान लाए हैं उस चीज पर जो हमारी तरफ भेजी गई है। वह उन्जिला इलेकुम, और उस चीज पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है। वह इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के मुस्लिम हैं। अब आप देखिए कि ये जो आयत का हिस्सा है इसमें बड़े उम्दा तरीके पर बात करने की रहनुमाई की गई है कि जो तबलीग का काम करते हैं, जो दावा का काम करते हैं, तो उन्हें इस तरह बात करनी चाहिए। अब आप देखिए कि अहले किताब से बात हो रही है, मुशरिकीन से नहीं हो रही। अहले किताब कौन थे? इनके पास किताबें आई और ये अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन फिर इनके अंदर कुछ तब्दीली आ गई। लेकिन बहरहाल ये किताबी आसमानी किताबों को ये मानते थे ना। तो अब यहां पर जो है अल्लाह ताला ने इनसे बात करने का तरीका खुद समझाया कि ऐसी बात से शुरू करो जिससे मुखातिब के दरमियान, आपके और मुखातिब के दरमियान मुताबकत पाई जाती हो, मुआफकत पाई जाती हो, यानी जो दोनों के दरमियान चीज मुश्तरिक हो, आप उससे बात शुरू करें। ये है तरीका जो अल्लाह ताला ने यहां पर बताया है। अब आप देख लीजिए कि हम ईमान लाए उस चीज पर जो हमारी तरफ भेजी गई है और उस चीज पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी। तो क्योंकि मुसलमान सब किताबों पर सब रसूलों पर ईमान तो लाते हैं ना, हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है, इलाही वाहिद, और हम उसी के मुस्लिम हैं। इमाम बुखारी ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह से रवायत की है कि अहले किताब इब्रानी जबान में लिखी हुई तौरात पढ़कर मुसलमानों के लिए इसकी तशरीह अरबी में करते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना इनकी तस्दीक करो और ना तकजीब, और कहो कि हम इस किताब पर ईमान ले आए जो हम पर नाजिल हुई है और उन पर भी जो तुम पर नाजिल हुई थी, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक है और हम उसी की बंदगी करते हैं। वकजालिक अनजलना इलैकल किताब, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसी तरह तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है। फल्लजीना आतेनाहुमुल किताबा, इसलिए वो लोग जिनको हमने पहले किताब दी थी, युमिनून बिह, वो इस पर ईमान लाते हैं। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है पहले किताब में से वो लोग जो के कुरान मजीद पर ईमान लाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अनहो। और ये जो थे, जब इन्होंने कुरान को सुना तो ईमान लाए, और आपके साथ और लोग भी थे। तो वो क्या करते हैं? युमिनून बिही, वो इस पर ईमान ले आते हैं। तो तमाम अहले किताब नहीं थे जो ईमान लाते थे, कुछ लोग थे, चंद थे, जिन्हें किताब इलाही का सही फहम हासिल हुआ था और उन्हें पता था कि उनकी किताबों में तस्दीक है कुरान की भी और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसलिए वो उस पर ईमान ले आए। वमिनहा उलाई मन युमिनु बिही, और इन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान ला रहे हैं। और ये इशारा है अहले अरब की तरफ, क्योंकि मुशरिकीन अरब में से भी कुछ लोग क्या कर रहे थे? ईमान ला रहे थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे मक्का में वही तो थे। तो यहाँ पे उनका जिक्र किया जा रहा है। तो अहले किताब में से भी कुछ लोग ईमान ला रहे हैं और फिर मुशरिकीन में से भी ईमान ला रहे हैं। वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल काफिरून, और हमारी आयात का इनकार सिर्फ काफिर ही किया करते हैं। तो अल्लाह की किताब का इनकार जो है कौन करते हैं? सिर्फ काफिर करते हैं, आम शख्स नहीं कर सकता। और आप देखें कि यहाँ पे कफारा का लफ्ज नहीं आया, कफारा होता है ना काफिर इनकार करना, बल्कि वमा यजहदु आया है और आखिर में आया है कि अल काफिरून। तो यजहदु जो है इसके माने क्या है? जीम हा दाल इसका रूट है। इसके मानी है ऐसी बात का जबान से इनकार करना जिसे दिल से ही तस्लीम करता हो। तो ये जो अबू जहल था, अबू लहब था, और जो मक्का के काफिर थे, दिल उनका मानता था लेकिन जबान उनकी इनकार करती थी। तो ये है, और ये इनकार का तीसरा दर्जा है, और कफरा जो है ये आखिरी दर्जा है कि हक को ना पहचानना, किसी चीज को छुपा देना, उस पर पर्दा डालना। इसीलिए किसान को भी काफिर कहते हैं कि वो जमीन में दाने को छुपा देता है। रात को भी काफिरातुन कहा जाता है कि रात जो है वो दिन की रोशनी को छुपा देती है। तो हमारी आयात का इनकार सिर्फ काफिर लोग ही करते हैं। फिर आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के सबूत में दलाइल दिए जा रहे हैं, पहले भी आप पढ़ चुकी हैं, दोबारा। तमा कुन ततलू मिन कबले ही, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे। वला तखुत्तहू बियमीनिका, और ना अपने हाथ से लिख सकते थे। तखुत्तहू खा त्वा त्वा, लिखना, किताबत करना, तहरीर, खत होता है, लिखी हुई चीज को भी कहते हैं। तो खत जो है वो लकीर को कहते हैं, लिखने को कहते हैं, वला तखुत्तुहू बियमीनिका, और ना अपने दाएं हाथ से आप लिख सकते थे। या मीम नान, या मीम नून, या मीम नून युमन दाएं हाथ को कहते हैं युमना, और आमतौर पे दाएं हाथ से लिखा जाता है। और ना अपने हाथ से आप लिख सकते थे इजन लरताबल मुबतिलून, अगर ऐसा होता तो बातें लोग शक में पड़ सकते थे। अब यहां पे कहा जा रहा है कि अगर आपको लिखना पढ़ना आता होता तो जो काफिर हैं वो शक कर सकते थे, क्योंकि कुफार जो थे वो इतराज करते थे। क्या इतराज करते थे? कि आप तो रात के बाद मजामीन जो हैं वो लेकर कुरान के नाम से पेश कर रहे हैं, आप किसी से सीख लेते हैं और सीखने के बाद जो है आप फिर वो बता देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ नबी, अगर आप लिखे पढ़े होते तो भी इस इल्जाम में कुछ वजन होता कि आपने तौरात पढ़कर ये कलाम घड़ा है। जब आप लिखना ही नहीं जानते, जब आप जो है वो पढ़ना ही नहीं जानते, तो फिर आप कहां से कोई चीज नकल कर सकते थे या सुनकर कुछ कर लेते? तो ये क्या है कि ये शक में पड़े हैं। इजन लरताब अल मुबतिलून, अगर आपको कुछ लिखना पढ़ना आता तो फिर भी इनका कुछ बात होती, इनके इतराज में कुछ वजन होता, लेकिन ये जानते हैं और आप लिखना पढ़ना नहीं जानते। यानी इनको ये बात पता है कि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूर अल्लज़ीन उतुल इल्म, दरअसल ये रोशन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जिनके दिलों में इल्म बख्शा गया है। तो अब यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि एक अनपढ़ का, एक उम्मी का कुरान जैसी किताब को पेश करना ये क्या है? ये रोशन निशानियां हैं अकल रखने वालों के लिए, ये पैगंबरी की रोशन तरीन निशानियां हैं, दलाइल हैं। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन, ये है मौजा, ये है रोशन निशानियां, वाज़े आयात हैं। फी सुदूरी सीनों में, अल्लाजीना उन लोगों के, ऊतुल इल्मा जिन्हें इल्म दिया गया है। तो आप देख लीजिए कि कुरान मजीद के हाफ़िज़ों के सीनों में, कुरान मजीद लोगों के दिलों में महफूज है ना, तो हाफिज के सीने में कुरान का मौजूद होना ये भी तो हाफ़िज़ा है ना। कुरान का मौजूद होना ये एक मौजज़ा है, कुरान का एजाज है कि कुरान मजीद लफ्ज ब लफ्ज सीने में महफूज हो जाता है। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन, तो ये जो रोशन निशानियां हैं, ये जो कुरान है, फी सुदूर इल्लज़ीना, ये लोगों के सीनों में है, हाफिज के सीने में है, ऊतुल इल्म जिसे इल्म बख्शा गया है। तो एक तरफ ये आपकी जो है वो आपके पैगंबर होने की रोशन दलील है, और दूसरी तरफ जो है लोगों का इसको याद कर लेना, सीनों में महफूज कर लेना रोशन निशानियों के मजमुए को, ये भी दलील है। फमा यजहदू बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, और हमारी आयात का इनकार नहीं करते मगर वो लोग जो जालिम हैं। पीछे कहा कि वो काफिर है, यहाँ कहा वो जालिम है। वकालू, और उन्होंने कहा, ये लोग कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयातु मिर रब्बी, क्यों ना उतारी गई इस शख्स पर निशानियां इसके रब की तरफ से। तो अब इन लोगों का ये मुतालबा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजे क्यों नहीं दिए गए, हालांकि कुरान जिंदा मोजा है, लेकिन ये इस पर ईमान नहीं लाते। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि निशानियां तो अल्लाह के पास मौजूद हैं, अल्लाह चाहे तो मोजे भेज दे, लेकिन पिछली कौमों पर जो मोजे भेजे गए थे तो कब वो ईमान लाए? तो अल्लाह के पास मोजे तो मौजूद है। वो इन्नमा अना नजीर मुबीन, और मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूं खोल खोल कर, कि मेरा ये मुकाम नहीं है कि मैं मोजे पेश करूं, मोजे तो अल्लाह के पास है, मेरा काम क्या है, मैं नजीर हूं और मुबीन हूं, खुला खबरदार करने वाला हूं। अवलम यकफिहिम, क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफी नहीं है, अन्ना अनजलना अलैकल किताबा, कि हमने आप पर किताब नाजिल की। अल किताब से मुराद कुरान मजीद है, युतला अलेहिम जो इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। इन्ना फी ज़ालिका लरहमतं व ज़िक्रा लिक़ौमी युमिनून, दरहक़ीक़त इसमें रहमत है और नसीहत उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इससे क्या बात पता चलती है कि कुरान मजीद जो है इसमें रहमत भी है, इसमें नसीहत भी है ऐसे लोगों के लिए जो कि ईमान लाने वाले हैं। तो एक तरफ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो जो रिसालत है उसके सबूत के लिए दलाइल दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कुरान मजीद को मौजजे के तौर पर पेश किया जा रहा है कि कुरान जो है ये मिरिकल्स ऑफ मिरिकल्स है, ये जिंदा जावेद मौजजा है, इसके बाद किसी और मौजजे की जरूरत नहीं है। तो कुरान मजीद से जो है वो फायदा हासिल करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, रहमत हासिल करने के लिए क्या करना होगा कि इसको मानना होगा, इस पर ईमान लाना होगा, इस पर यकीन करना होगा, इसको समझना होगा कि वाकई कुरान ही मेरे तमाम मसाइल का हल है। आयत नंबर 52, कुल कफा बिल्लाही बैनी व बैनकुम शहीदा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफी है। या लमु मा फिस समावाति वल अर्द, वो आसमान और जमीन में सब कुछ जानता है। वल्लजीन आमनू बिल बातिली व कफरू बिल्ला उलाइका हुमुल खासिरून, जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफर करते हैं वो खसारे में रहने वाले लोग हैं। तो फायदा हासिल करने वाले कौन हैं जो कि ईमान लाएंगे कुरान पर, अल्लाह के रसूल पर। अगर फिर भी लोग ईमान नहीं लाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, कहा जा रहा है कि आप इन लोगों को कह दीजिए कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफी है। तुम क्या कर रहे हो, आसमानों जमीन में जो कुछ है अल्लाह सारी बातों को जो है वो जानता है, और जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफर करते हैं वो मत समझे कि वो कामयाब रहेंगे, बल्कि फरमाया कि वो ही खसारे में रहने वाले हैं। क्यों? वो शुभात उठा रहे हैं, इतराजात उठा रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहे हैं, कुरान का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इससे फिक्रमंद मत हो, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपको इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है, आप अपना मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दें। कफा बिल्लाही बैनी व बैनकुम शहीदा, ये कितना ही इनकार करें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वयस्ताजिलूना कबिल अजाब, आयत नंबर 53 से लेकर 55 तक, 53 से 55, ये अजाब के लिए उनकी जल्दी थी, उनका मुतालबा था। तो अहले मक्का इनकार करने वाले ये कहते थे कि जब हम आपका इनकार करते हैं, हम आपको झुठलाते हैं, और अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हम पर फिर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ जाता। वयस्ताजिलूना कबिल अजाब, और ये लोग आपसे जल्दी अजाब लाने का मुतालबा करते हैं। अब आप देखिए कि आइन जीम लाम इजल जो है ये उजलत जल्दी के लिए इस्तेमाल होता है, और यासीन ता, नून सीन ता, अलिफ सीन ता, ये मांगने के मानी देता है ना, तो ये आपसे मांगते हैं मुतालबा करते हैं जल्दी अजाब का। वलौला अजलुम मुसम्मन, और अगर एक मुद्दत मुकरर ना कर दी गई होती, वलौला और अगर अजलुन एक वक्त, मुसम्मन मुकर्रा, अगर एक अजाब का वक्त मुकरर ना कर दिया होता, लजा अहमुल अजाब, तो इन पर अजाब जरूर बा जरूर आ जाता। लजा लाम लामे ताकीद है, तो अलबत्ता आ जाता इन पर अजाब। वलयातियन्नहुम, और जरूर आएगा इन पर, और जरूर बा जरूर आएगा इन पर, हमजा ता या आना बख्ततन अचानक, और जरूर आएगा अचानक इन पर, जब अजाब आएगा इन पर तो अचानक आएगा। वहुमला यशोरून, और इन्हें خبر بھی نہ ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم. یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا, تو ہمیں اپنی گرفت اور اپنی پکڑ سے بچا لے اور ہم پر اپنی رحمت نازل کر, ہمیں مہلت دے, ہمیں سنبھلنے والا بنا, ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے دے, مغفرت دے دے, اور ہمیں مہلت دے کہ ہم تجھے راضی کر لیں, حسن عمل کریں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, یہ عذاب تم سے جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جلدی عذاب لانے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں, تو یہ تو اللہ کی جہنم کے احاطے میں ہیں, ان کے برے اعمال ان کو گھیرے میں ہیں, ان کے اعمال ان کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. انہوں نے تو پورا پورا جہنم میں جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوا ہے, تیاری کی ہوئی ہے, اور جہنم کے گھیرے میں ہیں. ہا ووتا اس کا روٹ ہے, لامحیطہ تو ان کا, جیسے جہنم ان کا احاطہ کر لے گی, اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ان کو کور کر لے گی. یوم یخشا, جس دن یخشاہم گھیر لے گی ان کو, یخشاہم جب چھا جائے گا ان پر, العذاب عذاب, من فوقہم ان کے اوپر سے, ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے, ویقولو اور ان سے کہا جائے گا, ذوقوا ما کنتم تعملون, کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. تو یہ کون کہے گا انہیں کہ چکھو تم عذاب کا مزہ جو تم عمل کرتے تھے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم خود کہے گی, یا جہنم کا عذاب کہے گا, فرشتے کہیں گے, یا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہم لا تجل منہم, اللہم اجرنا من النار. تو آیت نمبر 53 سے 55 تک عذاب کے لیے جلدی بچانے والوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ عذاب تو بہت قریب ہے, یہ تو ایک مہلت ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے, تم سنبھل جاؤ. پھر آیت 56 سے 60 تک جو ہے مسلمانوں کو ہجرت کی ہدایت کی گئی ہے. وہ مسلمان جو ستائے جا رہے تھے, جو مظلوم تھے, تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہجرت کر لو, اور ساتھ ہی ہجرت کے فوائد, ثمرات اور برکات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. ہجرت کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یا عبادی الذین, اے میرے وہ بندو جو, آمنو ایمان لائے ہو, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو. بڑا خوبصورت انداز ہے, بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, انا ارضی, بے شک میری زمین, واسعتن وسیع ہے, کشادہ ہے, بے شک میری زمین فراخ ہے, بڑی وسیع ہے, فَإِيَّا فَاعْبُدُون, بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. اس آیت میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مکہ میں رہتے ہوئے میری بندگی تمہیں مشکل ہو رہی ہے, تو اے میرے ایمان لانے والے بندو مکہ کو چھوڑ دو, مکہ سے نکل جاؤ, اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے. کہاں نکل کر جانا؟ جہاں تم میرے بندے بن کر رہ سکو. تمہیں قوم, وطن, ملک کی بندگی نہیں کرنی, اللہ کی بندگی کرنی ہے. اس آیت سے چند باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ جب انسان کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے, تو اس زمین سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. نمبر دو, وطن پرستی, قوم پرستی, ملک پرستی یہ اصل چیز نہیں ہے. نمبر تین, اللہ کی بندگی جو ہے وہ اصل چیز ہے. اہم چیز دین کی آزادی ہے. اہم چیز اللہ کی بندگی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اور جب دین خطرے میں پڑے, ایمان خطرے میں پڑے, और अल्लाह की बंदगी ना इंसान कर सके मोमिन, तो कौम वतन मुल्क जगह को लात मार देनी चाहिए। एक सच्चा खुदा परस्त इंसान जो है वो कौन होता है? जो अल्लाह की बंदगी को हर चीज से अजीज रखता है, वो अल्लाह की खातिर दुनिया की हर चीज को कुर्बान कर देता है, मगर दीन को ईमान को दुनिया की खातिर कुर्बान नहीं करता। और इसमें एक और अहम बात पता चलती है कि ईमान को बचाने के लिए जब निकले तो ये बात याद रखें कि अल्लाह की जमीन जो है वो बड़ी वसी है। ईमान को बचाने के लिए जब आप अपना सब कुछ छोड़कर निकलेंगे तो फिर अल्लाह ताला जो है वो आपका इंतजाम करेगा, क्योंकि सारी जमीन जो है वो अल्लाह ताला की है। इस आयत में दरअसल मुहाजरीन को इत्मीनान दिलाया गया है कि वो जहां भी जाएंगे तो वो अल्लाह ही की जमीन है। अगर इस जगह पे अल्लाह ने तुम्हें जगह दी है, माल दिया है, रोजी दी है और तुम्हारी जरूरतों की वो कफालत कर रहा है, तो दुनिया के जिस गोशे में तुम जाओगे अल्लाह तुम्हारी जरूरियात को पूरा करेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन। हर मुतनफ्फिस को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी ही तरफ पलटा कर लाए जाओगे। यहाँ पे एक और हकीकत को खोलकर बयान किया गया कि इंसान जब क्या करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए जो है ना वो डरता है, वो परेशान होता है, वो समझता है कि अगर मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। सूरत अलंकबूत की आयत नंबर 57, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन। हर मुतनफिस को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारे ही तरफ पलटा कर लाए जाओगे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, ऊपर वाली आयत में हिजरत की बात है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि जान की फिक्र ना करो, ये तो कभी ना कभी जानी है। कोई भी शख्स दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा, तो ये मत फिक्र करो कि दुनिया में जान कैसे बचाओ, बल्कि ये फिक्र करो कि ईमान कैसे बचाया जाए, अल्लाह की बंदगी कैसे की जाए। यानी अगर मेरे पास तुम आए और तुम्हारे पास ईमान ना हुआ तो फिर सोचो कि फिर क्या बनेगी। तो यहाँ पर जो है ईमान की जो फिक्र है इसकी दावत दी जा रही है कि हर शख्स को मरना है। आप देखें कि कुरान में ये मजमून जो है बड़ी दफा आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लज्जतों को मिटा देने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। जिंदगी के आखिरी लम्हात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक में भी लुकनत आ गई थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मर्ज में वफात पाई, आपकी बेचैनी का ये हाल था कि पानी का प्याला साथ रखा था जिसमें आप बार बार हाथ मुबारक डालते, चेहरे पर मलते, अपनी चादर कभी चेहरे मुबारक पर डालते कभी हटा लेते। आप पर जब मौत की गशी तारी होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक से पसीना पोंछते और फरमाते, सुभान अल्लाह ही इन्ना लिल मौती लसकरात, सुभान अल्लाह मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की मौत की तकलीफ देखने के बाद अब मैं किसी के लिए मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती। तो इससे जो अहम बात हमारे सामने आती है वो ये है कि ये दुनिया की जो जिंदगी है इसमें सबसे पहले मरहला मौत का आएगा, और मौत वो कड़वा घूंट है जिसे हर जानदार ने पीना है। मरने के बाद कोई शख्स वापस नहीं आता, और दुनिया की जिंदगी जो है ये तो बहुत ही मुख्तसर है। तो अब यहाँ पे मक्की दौर के जो मुसलमान थे उन्हें क्या तालीम दी जा रही है कि अपने ईमान की फिक्र करो, अपने ईमान को बचाने की फिक्र करो, और असल चीज जो है वो कौम, वतन, मुल्क नहीं है, बल्कि असल चीज जो है वो दीन और ईमान है। और फिर आप देखें कि 83 अफराद थे जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। तो अल्लाह ताला ने अब अगली आयत में फिर साथ ही क्या फरमाया, वल्लज़ीन आमनू व आमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति, हम जरूर ब जरूर उनको आबाद करेंगे। लनुबव्विअन्नहुम इसके मानी है कि हम जगह देंगे उनको, ये आबाद करना, बा वो हमजा, ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, और इसके मानी है आबाद करना, जैसे ऐसी आबो हवा हो, ऐसी जगह हो कि जहां पर जो है वो माहौल और फिजा जो है वो आबाद होने वाले की तबीयत के मुताबिक हो, साजगार हो। क्योंकि बा वो हमजा जो है इसमें दो बातें पाई जाती हैं, एक रुजू इल शई, दूसरा बराबर सराबर होना। जैसे आप किसी जगह जा रहे हैं तो वहां की जो रिहायशी मकाम की फिजा है, वहां का जो माहौल है, उसको आपकी तबीयत के मुताबिक हो, तो तभी आप वहां पे रिहायश जो है उसको इख्तियार करते हैं। यानी आप एक जगह गए और फिर वो जगह आपके लिए साजगार हो, मुवाफिक हो, सेहत के लिहाज से, रहने के लिहाज से, तो इसको कहते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान और अमले सवाले रखने वालों को हम जरूर ब जरूर आबाद करेंगे, हम जरूर ब जरूर उनको जगह देंगे, लनुबव्विअन्नहुम, हम जगह देंगे उनको, मिनल जन्नति, जन्नत में, गुरफन, गुरफन जो है ये बाला खाने के लिए आता है, वैसे तो कमरे को भी कहते हैं, तो जन्नत के अंदर उनको शानदार मंजिलें मिलेंगी, बड़ा बुलंद मकाम मिलेगा, ऊंची ऊंची मंजिलें होंगी, तजरी मिन तहती हल अनहारू, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, खालिदीन फीहा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, नेमा अजरुल आमिलीन, कितना उम्दा अजर है अमल करने वालों के लिए। अब ये जो जन्नत में जाएंगे ये कौन है, जिन्होंने ईमान की खातिर हिजरत की थी, तो इन्हें हिजरत जो है उसके समरात बताए जा रहे हैं कि अल्लाह की खातिर, ईमान की खातिर जो वतन छोड़ देता है, जो मुल्क छोड़ देता है और हिजरत की तकलीफें बर्दाश्त करता है, रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार करता है अल्लाह की रजा की खातिर, तो ये उसका बदला है। ये हैं वो लोग जो ईमान लाने वाले हैं और अमले सवाले करने वाले हैं, इनकी नजरों में असल कीमत जो है वो ईमान की है, अल्लाह की बंदगी की है, अल्लाह की रजा की है। अब आप देखें कि अक्सर मैं ये सवाल पूछती हूँ और मैं अपने आप से भी पूछती हूँ, आपसे पूछती हूँ, आप देखें कि आप मगरिब की दुनिया में क्यों आए, अपना वतन, घर, वालदैन, रिश्तेदार सबको छोड़कर क्यों आए। बाज लोगों ने गल्फ में बड़ी अच्छी सहूलतों को छोड़ा, अच्छी जॉब्स को छोड़ा, क्यों आए, बच्चों की खातिर, ब्राइट फ्यूचर की खातिर, सिटीजनशिप की खातिर। तो जन्नत की सिटीजनशिप के लिए, रब की रजा के लिए आप क्या कुर्बानी करेंगे, आप अपने आप से पूछें कि हर कीमत पे मुझे रब की रजा चाहिए, हर कीमत पे मुझे जो है वो अल्लाह को राजी करना है, और वो सब चीजें छोड़नी है जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, अपनी बुरी आदतें छोड़नी है, कुफर को छोड़ना है, निफाक को छोड़ना है, बदअमलियों को छोड़ना है, गुनाहों की गठलियां जो है उनको अपने ऊपर से उतारना है, तौबा इस्तग़फार करना है, मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है। आप चाहती हैं आप सेहतमंद रहें, आपका वजन बहुत बढ़ गया है, आप डाइटिंग करती हैं, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करती हैं, है ना, आप वॉक करती हैं, आप परहेजी खाना खाती हैं, बहुत दिल चाहता है कि सब चीजें वो खाएं जो सब खा रहे हैं, लेकिन आप सब चीजों को छोड़ देते हैं, आप दुनिया की खातिर पढ़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, आईटी में हैं, आप एक अच्छा इम्तिहान पास करना चाह रहे हैं, आप रातों को जाग रहे हैं, आप किसी से मिल नहीं रहे इसलिए कि आपको एक आपका गोल है, तो ये जो जन्नत है आइए इसको अपना गोल बनाएं, आइए इसके सिटीजन बनने की फिक्र करें, आइए इसके लिए तैयारी करें, और आइए इसके लिए जो है अपने अंदर जान पैदा करें। उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो ये कौन लोग हैं जो कि जिनको जन्नत में अल्लाह ताला ऊंचे बुलंदोबाला इमारतों में रखेगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की खातिर कुर्बानियां की हैं, ईमान और अमले सवाले जो है उसको तरजीह दी है, और इनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिसके नीचे नहरें बहेंगी और उसमें हमेशा रहेंगे। बड़ा दिल चाहता है हमेशा जवान रहे, हमेशा बहार रहे, हमेशा खूबसूरत लगे, बाल सफेद ना हो, चेहरे पे झुर्रियां ना आए, और हमेशा अच्छी चीज चाहते हैं ना, तो ये हमेशा जन्नत में रहेंगे। आइए जन्नत में जाने की दुआ भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं और नियत भी करते हैं इंशाल्लाह। नेम अजरुल आमिलीन, कितना उम्दा अजर है अमल करने वालों के लिए। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सबर किया है। अब आप फिर देख लें, बगैर सबर के कुछ नहीं मिलता, दुनिया नहीं मिलती, दुनिया नहीं मिलती तो आखिरत कैसे मिल जाए। जिन्होंने सबर किया है, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने अपने रब को वकील बनाया है, अपनी जायदाद, कारोबार, अपनी जॉब, अपने बच्चे, उस पर नहीं भरोसा करते कि मतलब ये हमारे काम आएंगे, बल्कि उन्होंने अल्लाह को अपना भरोसा बनाया है, ईमान और नेकी पर कायम रहे, अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, वतन मुल्क छोड़कर तन तनहा निकल आए, हिजरत कर ली। तो यहाँ पे वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह के भरोसे पे वो मुल्क को छोड़कर निकल पड़े। वकअय्यि मिन दाब्बतिन, कितने ही जानवर हैं, यहाँ पे काफ जो है ये तशबीह का है और मानी है इसके कितने, बहुत से, और कितने हैं जानदार जानवर, ला तहमिलु रिज़्क़हा, जो अपना रिस्क उठाकर नहीं चलते, अल्लाहु यरज़ुकुहा व इय्याकुम, अल्लाह ही उनको रिस्क देता है और तुम्हारा राज़िक भी वही है, वहुवा समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। तो यहाँ पर भी जो है वो यही बात बताई जा रही है कि अल्लाह की जमीन बहुत कुशादा है और इसका दस्तरखान भी बहुत कुशादा है। तो अगर अल्लाह की खातिर मुल्क वतन जमीन को छोड़ो तो ये फिक्र मत करना कि खाएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से। देखते नहीं हो कि जमीन में कितने जानदार हैं, अपनी रोजी को बांध कर तो नहीं चलते। चिड़िया को देखें कि सुबह के वक्त अंधेरे मुंह वो खाली पेट निकलती है और फिर शाम के वक्त पेट भरकर अपने घोंसले में आती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करते जैसा करने का हक है तो तुम्हें भी इसी तरह रिस्क दिया जाता जैसे परिंदों को दिया जाता है। वो सुबह भूखे जाते हैं और शाम को पेट भरकर आते हैं। तो आइए अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल करें और यानी हर उस चीज को छोड़ दे जिसमें अल्लाह की नाफरमानी है, वो खा जॉब हो, वो जगह हो, कोई भी ऐसी चीज हो, और अल्लाह गैब से जो है वो मदद करेगा। फिर आयत नंबर 61 से लेकर 69 तक, 61 से 69 तक ये सूरत अलंकबूत की आखिरी आयत है। इसमें एक तरफ तौहीद के दलाइल हैं, दुनिया की हकीकत को बयान किया गया है, साथ साथ मुशरिकीन को उनके शिर्क पर मलामत की गई है, और जो ईमान लाने वाले हैं उनको मेहनत और मुजाहिदे की दावत दी गई है। वलाइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन लोगों से पूछे कि किसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, वसख़्खरश शम्स वल क़मरा, और किसने चांद और सूरज को मुसख़्खर किया है, लयकूलुन अल्लाह, तो जरूर बजरूर ये कहेंगे कि अल्लाह ने, फअन्ना युफकून, फिर ये किधर से धोखा खा रहे हैं कि जब इन सब का खालिक अल्लाह है, जब इन सबको चलाने वाला मुसख़्खर करने वाला अल्लाह है, तो फिर जो है तुम शिर्क क्यों करते हो। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ मिन इबादिह, अल्लाह ही है, वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसका रिस्क चाहता है कुशादा कर देता है, यबसुतु कुशादा कर देता है, खुला करता है जिसका वो चाहता है, वयक़दिरु लह, और जिसका चाहता है तंग कर देता है। इन अल्लाह बिकुल्ली शय इन अलीम, बेशक वो हर चीज पर जो है वो वाकिफ है, यकीनन वो हर चीज का जानने वाला है। तो माल जो है इसमें कमी करना, इसमें ज्यादती करना, ये अल्लाह देता है और अल्लाह जानता है कि मैं किसको ज्यादा दूं और किसको कम दूं। बोला इन सअलतहुम मन नज़ल मिनस समाई मा, अगर तुम इनसे पूछो कि किसने आसमान से बारिश बरसाई, किसने आसमान से पानी बरसाया, फाहिया बेहिल अर्दा मिन बादे मौतिहा, और इसके जरिए से मुर्दा जमीन में जो है वो जान पैदा कर दी, उसको जिंदा कर दिया। मुर्दा जमीन जो बंजर जमीन थी वो लहलहा उठी। ला यकूलुन अल्लाह, तो जरूर ब जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने, कुलिल हम्दुलिल्लाह, बस कहो तारीफ अल्लाह ही के लिए है। बल अक्सर हुम ला याकिलून, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते। तो ये दलाइल हैं तौहीद के हक में कि ये सब करने वाला जब अल्लाह है तो लोगों तुम एक अल्लाह के आगे अपने आप को झुका दो, एक अल्लाह की बंदगी करो। और जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं वो दुनिया ही को सब कुछ समझ लेते हैं, वो अल्लाह को भूल जाते हैं, वो आखरत को भूल जाते हैं। फमा हाजिल हयात दुनिया इल्ला लहवा वल लाइब, और ये दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं मगर एक खेल और तमाशा। लहवन लहव जो है लाम हावो, हर ऐसे शगल काम बात मसरूफियत को कहते हैं जिसका कोई फायदा ना हो, जो ला यानी हो, जो फजूल हो। और लाइव का लफ्ज जो है ये खेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहां पर जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐ दुनिया से मोहब्बत करने वालों, ऐ दुनिया पर नकद दिल हार देने वालों, ऐ दुनिया के पीछे भागने वालों, ऐ दुनिया की खातिर आखरत को भूल जाने वालों, मत भूलो कि ये दुनिया की जिंदगी एक खेल और दिल का बहलावा है। وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, असल जिंदगी का घर तो आखरत का घर है, काश के ये लोग जानते। हयावान जो है ये असल में हयायान था, हई से ही था, और ये जो दूसरी या है ना ये वाव से बदल गई है और हयावान आ गया। यहां पे दो या थी, जो सेकंड या थी ना वो वाव से बदल गई, जैसे हयात है ना हई उसी से है, और ये हयावान जैसे बलागत के लिए आया है, मानी की वुस्सत के लिए आया है कि दुनिया की जिंदगी की हकीकत बताने के बाद कि असल जिंदगी का घर तो आखरत का घर है, काश कि ये लोग जानते। तो यहां पे दुनिया की जिंदगी की हकीकत जो है वो बताई जा रही है। आप याद रखिए कि दुनिया की जिंदगी आरजी और खेल तमाशा है, बहुत छोटी, आखरत के मुकाबले में बड़ी नापायदार। तो इस छोटी सी जिंदगी में ऐसे काम ना करें जिससे हमेशा की जिंदगी खराब हो जाए। छोटी सी जिंदगी को अपनी मंजिल ना बना लें कि फिर आखरत की जिंदगी के लिए कुछ तैयारी ना करें। तो क्या करें, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। अगर किसी के पास एक ही रोटी हो और उसके बच्चे भूखे हों तो उस रोटी को परिंदों के आगे नहीं डालेगा। किसी के पास एक पानी की छागल हो और उसने सहरा अबूर करना हो तो उससे वो पौनी धोएगा। और अगर आपके पास एक ही जिंदगी है और उससे आपने आखरत कमानी है तो आप उसको बेकार और फजूल कामों पर कैसे खर्च कर सकती हैं? तो फिर क्या करना है, दुनिया में रहते हुए आखरत की तैयारी करनी है। और याद रखें कि इंसान की जो जिंदगी है दुनिया की, ये सबसे छोटी स्टेज है, इसके बाद जो दौर शुरू होगा वो जो है वो तवील दौर जो है वो शुरू होगा। तो दुनिया की जिंदगी जो है ये सबसे छोटी स्टेज है, इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन इस छोटी स्टेज में जो तवील स्टेज आने वाली है आखिरत की, इसकी हमें तैयारी करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हों के कंधे को पकड़कर फरमाया कि अब्दुल्ला दुनिया में इस तरह रहे गोया कि तू परदेसी या मुसाफिर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हों कहा करते थे कि जब शाम हो तो सुबह का इंतजार न कर, और जब सुबह हो तो शाम का मुंतजर न रह, और अपनी सेहत के जमाने में अपनी बीमारी के जमाने के लिए तोशा ले ले, और अपनी जिंदगी के दौरान अपनी मौत के लिए तैयारी कर ले। तो इसे बुखारी ने रवायत किया है। इसके माने क्या है कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना। अब आप देख रहे हैं कि जब आप सफर करती होंगी और आप कितना हल्का फुल्का सफर करना चाहती होंगी कि थोड़ा सा सामान हो, और मुसाफिर कभी रास्ते में दिल नहीं लगाता, हमेशा अपने घर पहुंचना चाहता है। तो असल बात क्या है, कीजिए और शरहे जिंदगी, कुछ सहर कुछ दोपहर कुछ शाम है, कोई सोता हो जैसे डूबती हुई कश्ती के तख्ते पर, कोई सोता हो जैसे डूबती हुई कश्ती के तख्ते पर, अगर कुछ है तो बस इतनी सी दुनिया की हकीकत है। यानी अगर आप सोचें कि एक ऐसी कश्ती जो डूब रही है उसमें कोई जब सोएगा तो क्या है कि किसी वक्त भी कश्ती तो डूब जाएगी ना, तो बहुत ही थोड़ा सा वक्त है। और किसी बुजुर्ग का कॉल है बड़ा ही खूबसूरत कि दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक परिंदा और उसका साया। और आप क्या, साया जो है ये दुनिया है और परिंदा जो है ये आखिरत है, और आप साये के पीछे भागते हैं, आप भागते रहे, आप कभी साये को पकड़ नहीं सकते। आप दुनिया के पीछे भागेंगे, दुनिया और आगे जाएगी और कभी आपका दिल नहीं भरेगा। इंसान का दिल नहीं दुनिया से भरता, आंखें नहीं भरती, इंसान की आंखों को कब्र की मट्टी बंद करती है, आंखें खुली रहती हैं, दुनिया से चला जाता है तो भी आंखें खुली रहती हैं। तो इंसान साये के पीछे भागता है, साया पकड़ा नहीं जा सकता। परिंदे के पीछे भागेगा तो साया उसके कदमों में आ जाएगा। और परिंदा क्या है, आखिरत, आखिरत की फिक्र करेंगे तो दुनिया भी बन गई और आखिरत भी। रब्बना आतिना फि दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाब अन्नार। अब ये जो दुनिया से मोहब्बत करने वाले हैं, अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी मंजर कशी की है। ये जो आयत 64 है, इसमें गुमराही का सबब दुनिया को बताया कि इन्होंने आखिरत की बजाय दुनिया को अपना एम, गोल और नस्मुल ऐन बनाया है। और अगली आयत में दुनिया में जो मस्त हैं उनकी मिसाल दी गई है। फैजा रकिबू फिल फुल की, जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं, दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआ मांगते हैं। क्यों वो कश्ती में जो है मुखलिस हो जाते हैं, क्योंकि कश्ती हचकोले खा रही है, डूबने के करीब है, बड़ा सख्त तूफान है। अब वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, या अल्लाह तो इस मुश्किल से निकाल दे। और ये जो समंदर और कश्ती की मिसाल है, दरअसल ये दुनिया की मिसाल है। कश्ती डूबने लगी से मुराद दुनिया के मसाइल और मुश्किलात, बीमारी आ गई, जॉब चली गई, कोई डेथ हो गई, कोई जख्म हो गया, कोई परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई। जो ही मुसीबत आई तो फिर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अच्छा, मुसीबत टल गई, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री, फिर जब वो अल्लाह इन्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है, मुसीबत खत्म हो गई, इजाहुम युशरिकून, यकायक ये शिर्क करने लगते हैं, यकफुरू बिमा आतेनाहुम, ताकि अल्लाह की दी हुई इस निजात पर कुफराने नेमत करें, ले यकफुरू, ताकि वो नशुक्री करें, कुफर करें, बिमा आतेनाहुम, कि अल्लाह ताला ने उनको मुसीबत से निकाल दिया, सेहत दे दी, जॉब दोबारा आ गई, औलाद दे दी, तरक्की हो गई, नेमतें मिल गई, नेमतों की बारिश होने लगी, तो इन्होंने क्या किया, फिर नशुक्री शुरू कर दी, कुफर शुरू किया। बोले ये तमत्ताउ, ताकि ये खूब मजे लूटें, खूब फायदे उठाएं, فسوفا یا لمون اچھا قریب انہیں پتا چل جائے گا. اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں, کیا یہ غور نہیں کرتے, انا جعلنا حرما آمنا کہ ہم نے حرم ایک پر امن حرم بنایا ہے. ویتخطف الناس من حولہم حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالی حرم کی جو نعمت ہے اس کا احساس دلاتے ہیں. کیوں؟ حرم کی وجہ سے پہلے مکہ کو بڑا ہی امن نصیب تھا, ان کی تجارت بڑے عروج پر تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل مکہ سے سوال کیا ہے کہ کبھی یہ اس بات پر سوچتے نہیں ہیں کہ حرم کی وجہ سے انہیں کتنا امن اور سکون حاصل ہے, کسی ان کی دیوی یا دیوتا کی وجہ سے تھوڑی انہیں امن ملا ہے, کسی لات یا عزا کی وجہ سے یا حبل کی وجہ سے تو نہیں ان کو سکون ملا. ارد گرد کے علاقے حرم سے دور کے علاقوں میں بڑی بدامنی پائی جاتی تھی, لیکن حرم میں وہ قاتل پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, لوگوں کو سکون مل جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کی وجہ سے ان کو امن ملا ہے یا پھر ان کے بتوں کی وجہ سے, حال کیا ہے؟ وہ یتخطفو لوگ اچک لیے جاتے ہیں, یعنی ڈاکے ہیں, قتل و غارت ہے, فتنے ہیں, فساد ہیں, من حولہم حرم کے ارد گرد کے علاقے میں. افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون, کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اور کون ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ گھڑے. اور یہ جو ہے نا ومن ازلم ممن افترى, یہ شرک جو ہے نا یہ اس کی طرف اشارہ ہے, شرک سے تعبیر ہے. اور وہ کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے, اور وہ کیا کہتے تھے؟ کوئی اللہ نے رسول نہیں بھیجا, آپ کوئی نہیں اللہ کے رسول, اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی, اللہ ایک نہیں ہے اور بہت سے معبود. تو یہ سارا اس طرف اشارہ ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, او كَذَّبَ بِالْحَقِّ, یا حق کو جھٹلائے, لَمَّا جَاءَهُ, جبکہ وہ ان کے سامنے آ چکا ہو. رسول آ چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کو پیش کر رہے تھے اور لوگ تھے کہ انکار کر رہے تھے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ, کیا کافروں کے لیے جہنم ہی کافی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ جو مثوًا لفظ ہے اس کا روٹ ہے سا و یا, سا و یا, اور اس کے معنی ہیں سا و یا کے ٹھکانہ, ٹھکانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کیا کافروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ جو ہے یہ کافی نہیں ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھول گئے یہ لوگ کہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے. تو سورۃ العنکبوت کے اختتام پر کفر کرنے والے, شرک کرنے والے, ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے, ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ توحید پرست بن جائیں. حق آ چکا ہے اور حق سے مراد ہے قرآن, رسول, تو شرک چھوڑ کر وہ حق پرست بن جائیں. تو جہنم جو ہے اس میں کون جائیں گے؟ کفر اور شرک کرنے والے. اللہم لا تجل منہم, یا اللہ تو ہمارے ایمان اور دین کی حفاظت کرنا. بڑی جو ہے وہ بڑی آزمائش کا دور ہے اور ہر طرف جو ہے وہ بے حیائی اور کفر کی لہریں ہیں اور ہوائیں ہیں, اور اللہ تو ہمیں, ہمارے بچوں کو اور کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات جو ہیں ان کے دین اور ایمان کی تو حفاظت کرنا. تو ہمارے ماتھے کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا. آخری آیت جو ہے اس میں مسلمانوں کو मुजाहिदे की दावत दी गई है। इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद की दावत दी गई है। और यही सूरत अलंकबूत का पैगाम है। इब्तदा में भी यही बात थी, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, और इख्तिताम पर भी यही बात है, वल्लजीन जाहदू फीना, और जो लोग सख्त कोशिश करेंगे, जाहदू सख्त कोशिश करेंगे, फीना इसको सर्कल कर लें, इसका मतलब है फीना के मानी है फी में ना हमारे, तो फीना के मानी है कि हमारे रास्ते में अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, जो लोग हमारे रास्ते में हमारी खातिर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, मेरे रास्ते में निकलेंगे, मेरी खातिर खतरे जो है मोल लेंगे, सबर करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, जो मेरी खातिर कुर्बानियां करेंगे, मेरी खातिर मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त करेंगे, या ना दिया न हूं सुबूलना, हम जरूर ब जरूर उन्हें अपने रास्ते की तरफ रहनुमाई करेंगे, हम जरूर ब जरूर दिखा देंगे उनको रास्ता। इसके मानी है कि अपनी तरफ आने की राहें मैं उनके लिए खोल दूंगा, मैं कदम कदम पर उनकी रहनुमाई करूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम मेरी रजा चाहते हो, तुम मेरी खुशनुदी चाहते हो, तुम मुझे राजी करना चाहते हो, तो मैं उन्हें जो है कदम कदम पर, मोड़ मोड़ पर रोशनी दिखाऊंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि इधर आओ ये है सीधा रास्ता, इधर से हट जाओ ये है गलत रास्ता, यहां नियत को फल लगता है पेड़ों से ये कह देना, यहां नियत को फल लगता है पेड़ों से ये कह देना, उसे कुछ भी नहीं मिलता जो नियत हार देता है, चमक दरकार है तुझको तो जर्रे की तरह हो जा, चमक दरकार है तुझको तो जर्रे की तरह हो जा, पहाड़ों को हमेशा वो अंधेरे गार देता है, नियत में है खुलूस तो मंजिल है दो कदम, गालिब हो मसलहत तो हर एक मरहला तवील। तो आइए अपनी नियतों के अंदर इखलास पैदा करें, आइए भूले हुए सबक को याद कर लें। असल में बाहर कोई मुश्किल नहीं है, अंदर मुश्किल है, अंदर नफ्स में, क्योंकि ये जो ख्वाहिशात हैं ये बहुत तंग करती हैं, सर उठाती हैं, मन बड़ा पापी है। ये कदम कदम बलाएं, ये सवादे कुएं जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। तो क्या करना है, अल्लाह की खातिर जो है वो मेहनत करनी है, कुर्बानी करनी है। وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, और यकीनन अल्लाह नेकोकारों ही के साथ है। अल्लाह की मदद और तौफीक और हदायत किन लोगों को मिलती है, किन लोगों के साथ होती है, जो एहसान के दर्जे की नेकियां करते हैं। तो आज अबू बकर और सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली रदी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह इन सब से राजी हो जाए, सब सहाबा और सहाबियात से। आज इनका नाम तो बहुत है, इनका किरदार पैदा करने की जरूरत है। कुरान पढ़ते थे और इस पर अमल करते थे, वो दिन के शाह सवार थे और रात के राहिब थे। और अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि आप कहाँ पे खड़ी हैं, आप क्या कहती हैं, आप क्या करती हैं, आप क्या चाहती हैं। तो आइए अल्लाह की नाशुक्री को छोड़कर अल्लाह की शुक्रगुजारी इख्तियार करें, आइए अल्लाह ताला की बंदगी करें, आइए अपने नफ्स, शैतान और अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो ये है सूरत अलंकबूत, और हमारे लिए अमल के जो उसूल निकलते हैं उनमें से पहला उसूल जो है वो ये है कि अल्लाह की बंदगी इख्तियार करे, एक अल्लाह की बंदगी। शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी जो है उसको हम छोड़ दें, पहला ये है अमल का उसूल। और दूसरा, पहले इल्म में शामिल हो, इल्म हासिल करें, क्योंकि इल्म रखने वाले अल्लाह से डरते हैं। तो अपने इल्म को बढ़ाने की फिक्र करें। आपका इल्म शैलो नहीं होना चाहिए, सतही नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका इल्म बेहतरीन इल्म होना चाहिए जो कि कुरान और सुन्नत का इल्म है, और उसके लिए मेहनत मशक्कत करें। फिर तीसरी जो है हमारे लिए सबसे कीमती चीज, ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है। अपने ईमान को बढ़ाने की और उसको जिंदा करने की, जानदार बनाने की हम फिक्र करें। चौथी बात जो है, हम ये बात याद रखें कि मरना तो है ही, तो इस हाल में मौत आए कि अल्लाह हमसे राजी हो। मौत से डरने की बजाय इस बात से डरे कि जब मैं मरूंगी तो मेरी अल्लाह से मुलाकात किस हाल में होगी, मेरा अंजाम क्या होगा, मुझे नामाए माल किस हाथ में मिलेगा। ये है आम चीज जो कि डरने वाली है। और रिस्क के मामले में और सब चीजों के मामले में अल्लाह पर भरोसा करें, जैसे बीबी हाजरा ने सहरा में किया था कि अगर मेरे अल्लाह का फैसला है तो मेरा अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा। तो अल्लाह के फैसलों पे राजी हो जाएं, आपकी जिंदगी में एक सुकून आ जाएगा, डिप्रेशन खत्म, ब्लड प्रेशर खत्म और शुगर खत्म जो टेंशन से हो। तो बहुत सी बीमारियां जो हैं वो कुरान से दोस्ती करके, अल्लाह के करीब होकर, नमाज पढ़ के जो है वो बहुत सी हमारी मुश्किलात और परेशानियां हल हो जाएंगी। फिर अमल का एक उसूल जो है वो कुरान की तिलावत और इसका इत्तबा है। नमाज, ऐसी जानदार नमाज जो हमें बेहयाई और बुराई के कामों से रोक दे। और आखिरी बात कि जो भी मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं इस्लाम की वजह से नहीं आती, मुसलमान होने की वजह से नहीं आती, बल्कि अपने अमलों की कमाई है जो सामने आती है। लेकिन आप जब कुरान पढ़ते हैं, दीन की तरफ चलते हैं, तो कोई कहीं मसला पेश आता है तो सबसे पहले ये बात आती है कि जो है वो आप कुरान की क्लास में, दीन के प्रोग्राम में, इसमें बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, फलां चीज इग्नोर हो रही है, फलां चीज मुश्किल है, फलां कमी है, फलां कमी है। और अगर आप वही बैठकर आप टीवी देख रही हैं, आप सो रही हैं, आप बातें कर रही हैं, तो फिर नहीं आपके ऊपर कोई उंगली उठाता। कोई कभी कहेंगे कि सोशलाइजेशन की चाहिए जरूरत जरूरत है, कोई कहेगा आराम चाहिए, कोई कहेगा आखिर हम भी तो इंसान हैं, और फिर बहुत सी बातें। लेकिन जहां पे दीन की बात आती है तो बहुत सी उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। तो याद रखना है कि अल्लाह के आगे झुकना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, मेहनत करनी है, और जो है वो दीन इस्लाम पर अमल करना है। और इसके लिए अमल का ये उसूल भी लिया जा सकता है कि आप अपना मुहासबा करें कि आप दुनिया के लिए कितनी मेहनत मशक्कत करती हैं, आप जॉब करती हैं, आप अपने घर को सजाती हैं, आप अपने कपड़ों के लिए कितनी पिकी हैं, कितनी बनावट का ख्याल रखती हैं, कलर क्या चल रहा है, फैशन क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान से मेरा एक सूट आया और कमीज बहुत ही लंबी, और तो मैंने अपनी बहन को फोन किया, मैंने कहा इतनी लंबी कमीज आप भेज दिया, तो कह रही है बाजी आपको नहीं पता आजकल फैशन क्या चल रहा है, मैंने तो फैशन के मुताबिक भेजी है। तो आप देखें कि हम हर चीज में ख्याल रखते हैं कि फैशन क्या है, लोग क्या पसंद करते हैं, फलां क्या पसंद करता है, एक चीज को भूल जाते हैं कि मेरा रब क्या पसंद करता है। तो याद रखें पहले अल्लाह का बनना है और फिर अल्लाह की पसंद के मुताबिक दूसरों का बनना है। ऐसा नहीं करना कि दूसरों की पसंद को सामने रखें और अल्लाह को भूल जाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको बामल बनाए, हुस्ने अमल की दौलत से माला माल कर दे, हम सबसे राजी हो जाए। और अब और फिक्र करती जाएं कि 21वें पारा पारे को शुरू कर दिया है, इल्म बढ़ रहा है लेकिन अमल के मैदान में कहाँ पे खड़े हैं। याद रखिएगा, इल्म अमल को आवाज देता है, जब आप पाए तो ठहर जाता है वरना चल देता है। ये इल्म सिर्फ उन्हीं के पास रहेगा जो इस पे अमल करेंगे, वरना फिर ये इल्म भूली बिसरी यादें रह जाएगा, खत्म। उन्हीं के पास रहेगा जो इसको याद रखेंगे और इस पर अमल करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ करे, हम सबसे राजी हो जाए, हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए और उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले जिनसे अल्लाह जो है वो राजी हो जाता है। हमें सोबते सवाले दे दे, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले और एहसान के दर्जे की नेकियां करने वालों में शामिल करे। हम सब की जायज और नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, जो बीमार है उनको शिफाए कामला अता करे, जो बे औलाद है उनको औलाद की नेमत से नवाजे, जो हमल से है उनको खैरियत से हमल से फारिग करे, जो बेटे के ख्वाहिशमंद है उनको बेटे की नेमत दे, जिन्हें औलाद दी है उनकी औलाद को उनकी आंखों की ठंडक बना दे, उनकी आंखों के आंसू ना बनाए, उनकी आंखों की चुभन ना बनाए, उनके दिलों के दुख ना बनाए, बल्कि उनके उनकी आंखों की ठंडक बनाए, मुत्तकियों का इमाम बनाए और आंखों के साथ साथ सीने का सुकून बना दे। और फिर हमें हमारी औलादों के साथ, हमारे शोहरों के साथ हमें जन्नत में जमा कर दे, इकट्ठा कर दे। हमारे वालदैन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल कर। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाब النار। रब्बि ज'अलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती व मिन ज़ुर्रियती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़बल दुआ। रब्बना अग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह हमें अपने बारे में, अपनी औलाद के बारे में, हमें हर चीज के बारे में अच्छे फैसले करने वाला बना, वो फैसले जो तुझे राजी कर दें। हमारी पसंद को ऐसी पसंद बना जो तुझे राजी कर दे, हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता कर जो तुझे राजी कर दे। अल्लाह हमारे दिल की धड़कने, हमारी सांसें, हमारी रगों में खून का आना जाना, हमारे आंसू, हमारी आहें, हमारी दुआएं, इन सब का हासिल एक ही हो कि अल्लाह बस तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, तू हमें अफरात और तफरीत से बचा कर एक मोतदिन जिंदगी बसर करने वाला बना। ना हम वो काम करें जो जो तुझे पसंद नहीं है, बल्कि हम वो काम करें जो तेरी पसंद के ऐन मुताबिक है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ। और या अल्लाह तू हमें हमें वो आजमाइश उन आजमाइशों में ना डालना जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। हम बड़े ही कमजोर हैं और तू जानता है। हम बड़े कमजोर हैं और तू जानता है कि हम कितने कमजोर हैं। तो तू खुद कहता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो हमारी वुस्सत से बढ़कर हमें हम पे बोझ ना डालना और हमें अपने फैसलों पे राजी कर देना। रदी तो बिल्लाही रब बिल इस्लाम दीना वमी मोहम्मद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله بيماروں کو شفا دے دے، یا اللہ ہمارے بوڑھے والدین ان کی بے بسی کی زندگی अल्लाह तू आसान कर दे, उनकी तन्हाइयों का साथी बन जा, उनकी बीमारियों में शिफा दे दे। और अल्लाह हमारे घरों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल कर, अल्लाह हमारे घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल कर। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व असलिह ज़ाता बैनिना। या अल्लाह हमारे शोहरों में मोहब्बत दे दे, हमें और हमारे शोहरों में मोहब्बत दे दे। अल्लाह हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने वाला बना, और अल्लाह तो हमसे राजी हो जा। हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को नमाज का शौक दे दे, अल्लाह तो उन्हें नमाज का शौक दे दे। अल्लाह हमारे बस में बस इतना था कि हम उनको नमाज सिखा दें, हमने नमाज सिखा दी, अब आप नमाज का शौक दे दीजिए, आप कुरान का शौक दे दीजिए, आप अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत दे दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर लीजिए। तेरे प्यारे रसूल ने फरमाया कि कुरान की तिलावत के बाद, कुरान पढ़ने के बाद जो दुआ की जाती है कबूल की जाती है, और अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला बिन मांगे मांगने वालों से ज्यादा देते हैं जो कुरान पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ होते हैं। और अल्लाह तू हमें बिन मांगे मांगने वालों से ज्यादा दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين ثم امين